Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sonu Sood.
धन्यवाद लालिमा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ विशाल दहिया. विशाल जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
नमस्कार, धन्यवाद चौधरी.
और अब हेडलाइंस के साथ है लालिमा अनेजा डैंग.
Thanks, Sonu. Yes, friends, let's begin with the headlines. Bull run continues in domestic stock markets. Sensex surges nearly 2% while Nifty settles above 23,000 mark. Indian economy to grow at 6.5% in 2025, says UNCTAD report. And international crude oil prices rise over 1% today.
घरेलू शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी. सेंसेक्स लगभग 2% के उछाल में निफ्टी 23,000 के स्तर को पार कर गया. अंकटाट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में 6.5% की दर से बढ़ेगी और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आज 1% से अधिक का उछाल. सबसे पहले चलते हैं भारतीय शेयर बाजारों की ओर, जहां कमजोर शुरुआत के बाद वित्तीय स्टॉक्स में मजबूत खरीदारी और विदेशी फंडों का भारत में प्रवाह बने रहने के बल पर प्रमुख घरेलू बाजारों में मजबूती लौट आई. बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 1.96% के उछाल से 1,509 अंकों की तेजी दर्ज करता हुआ 78,553 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.77% की तेजी से 414 अंक बढ़कर 23,851 पर बंद हुआ. दोनों सूचकांक लगातार चौथे सत्र बढ़त में रहे. व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी तेजी का रुख था, हालांकि तुलनात्मक रूप से तेजी कुछ कम थी. बीएसई मिड कैप सूचकांक आज 0.56% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.52% की वृद्धि दर्ज हुई.
A look at the stocks in detail now. Well, domestic benchmark indices rebounded sharply today after a weak opening led by strong buying in financial stocks and sustained foreign fund inflows. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, jumped 1,509 points or 1.96% to close at 78,553. The National Stock Exchange, Nifty 50, gained 414 points or 1.77%. to settle at 23,851. Both indices closed in the positive territory for the fourth consecutive session. The broader market indices at the BSE also ended in green territory. The mid-cap index rose 0.56%, while the small-cap index added 0.52%. In the Sensex index, 29 out of 30 companies ended in positive territory. Among the top gainers, Eternal Limited rallied 4.37%, ICICI Bank rose 3.68%, Bharti Airtel 3.63%. The only laggard was Tech Mahindra, which lost 0.24%. Well, in sectoral indices at the BSE, all sectors registered gain. The top gainers were BankEx, that rose 2.56%, Telecom gained 2.22%, and financial services added 2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,396 companies advanced, 1,563 declined, and shares of 147 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 63 companies hit their 52-week high, while 16 companies hit their 52-week low. So, Vishal, what makes this happen that Sensex rising up 1,509 points and closing at 78,553? The bull run continues. The U.S. president's utterances have had a huge impact, have cast a lot of shadow over the markets, but this still continues. So what is it that that has kind of brought us to this high?
Well, there are a number of factors, Lalimaji, and before I come to the factors, let me give you some hardcore figures, and they'll sort of create a picture as to what we're talking about. One is on April 2nd, when U.S. President Donald Trump dropped that, tea storm in the cup, that is the tariff storm, across the world markets, there was a significant impact, the markets came down significantly, of course, Indian markets as well. But with today's numbers in mind, Indian market has outperformed its peers. It has erased all losses which it sustained on 2nd of April when the announcement came in from President Trump. The second significant number is that the FIIs, as you were mentioning in the headlines as well, they've turned net buyers now. And so far in the month of April, the FII buying in the market has crossed the level of 10,000 crore rupees. That's very significant. It has just been half a month with, a few holidays as well in between. Also, third significant number is that this performance coming in, a bit symbolic, I must say, but it is SEBI's 150th anniversary as well today. So clearly, this makes a lot of impact. Now coming to the reasons, why is it happening? Of course, one is hidden in the numbers only, the FII becoming net buyers. Now, again, the question would be, why are they becoming net buyers now? Because around 15 days ago, they were the net sellers, and the month of March and specifically, first few days of April, we saw how the FIIs were moving out, pushing out. Now, the reason is that given the ongoing standoff between the United States and China, the foreign institutional investors strongly believe that the Indian market is the safest place for them to invest. So they're coming back in droves, they're coming back in large numbers, and they strongly believe that yes, this is the safest place for them to invest right now, not Chinese market, not the US market as well, because the US market, since the the tariff announcement, has been in a downward spiral only. There have been some moments of relief in between when a pause of 90 days was announced by President Trump, but overall, if you look at it, the US markets have not performed very well. Chinese markets, of course, the Chinese economic scenario is also not considered very positive by the FIIs because of that huge standoff which is ongoing between both these countries, the United States and China. So that is one reason, FII, one large reason. Second, very important reason, which I've been underlining every time and again when we're talking about the stability of the Indian markets or the Indian economy, is the domestic demand. Right. The Indian economy has a very strong domestic demand. We're not at all completely dependent on the export. So this entire tariff, storm is going to impact countries which have a lot of their, GDP attributed to the exports. For example, Vietnam is one, Bangladesh is another. China is very significantly going to, feel that pinch. But as far as India is concerned, around 80% of the domestic demand is basically responsible for the consumption within the country itself. So that is one thing which sustains the confidence of the investors in the domestic economy. Then it translates into the domestic markets as well, the Sensex also. And of course, third reason I would say is global cues. Now, again, people will say that, what kind of global cues? There is still just a pause which was announced a few days ago, so there's nothing big happening. But yes, look behind the headlines. There is a lot which is happening. There is an ongoing, trade negotiation which is happening between Japan and United States of America. And that has a very positive impact on, the Japanese markets. That has, again, a trickle-down effect on other Asian markets, including India as well. And let's not forget that there have been times wherein, you know, statements have come in from the United States officials and the top analysts in the United States market as well, that for United States, three countries are really, really important, significant trade partners. That is Japan, United Kingdom, and India. So, of course, you know, if not everything is hunky-dory between United States and China, they have no option but to fall back upon an emerging economy and a very stable economy like India. So and stable, therein we reap the benefits.
Stable jo aapne word use kiya, main usi ke bare mein puchne wali thi ki yahan jo political stability hai, yahan jo monetary policy aur fiscal policy ke beech jo talmel hai, aur monetary policy ko jo ab ease kiya ja raha hai RBI dwara, aaj humne dekha ki financial stocks jo hai wo sabse zyada badhne wale stocks rahe, unhi ki wajah se rebound bhi aaya market mein initial फॉल के बाद. सो आपको लगता है कि ये भी जो एक हर तरह से सब लगता है कि एक ही गोल की तरफ काम कर रहे हैं, अनलाइक सम अदर कंट्रीज लाइक यूएस में हम देख रहे हैं कि मॉनेटरी एंड फिस्कल दे आर एट लॉगर हेड्स. सो ये जो स्टेबिलिटी आपने जो वर्ड यूज किया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया में जिसकी तरफ सबकी नजर है.
जी बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि इस गाड़ी के चार पहिए हैं सोनू जी. पहला आपने कुछ दो तीन की बात की, मैं उसे थोड़ा सा पिरो के समझाने की कोशिश करता हूँ हमारे श्रोताओं को. सबसे पहली बात है कि स्टेबिलिटी, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो कंसिस्टेंसी जिसे कहा जाए वो हो. और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो इकोनॉमिक पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी अपने आप दिखाई देती है. दूसरा है जो जिसे कहा जाए मॉनेटरी पॉलिसी की जो मैनेजमेंट है, सेंट्रल बैंक के जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी बात की जाए तो अब वो भी जिस डायरेक्शन में चलना चाहिए उस डायरेक्शन में सही तरीके से चल रहा है.
रेट कट शुरू हो गए हैं.
बिल्कुल. तीसरा, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहिया है इस गाड़ी का जो है. और चौथा पहिया जिसे हम कहें वो है कि ग्लोबल क्यूज क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी का, ग्लोबल जो बातें होती हैं उनका क्या असर है. तो उसमें कभी कभी थोड़ी हवा कम होती है, लेकिन वो बाकी, क्योंकि तीनों जो टायर हैं गाड़ी के वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वो ठीक दिशा में चल रही है, गाड़ी ठीक दिशा में चल रही है, तो वो हमको दिखाई देता है. इसीलिए एफआईआईज की जो हमने बात की, बीच में जरूर एफआईआईज ने पैसा निकाला, लेकिन अब फिर से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लगता है कि केवल क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं सब लोग, बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उनका और काफी बड़ी संख्या में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं भारत में, तो निश्चित रूप से वो सारी चीजों को एनालाइज करके तभी फैसला लेंगे. और उनका एनालिसिस बिल्कुल सटीक है, ये सही कहता है कि आप चाइनीज मार्केट में जाएंगे वहां स्टेबिलिटी इस वक्त आपको देखने को नहीं मिलेगी. आप कभी 145%, कभी 200%, कभी 240%, जो ट्रेड वॉर जो चल रही है, रेयर अर्थ मिनरल्स उधर से रोक दिए जाते हैं, इधर से फिर से अमेरिका की तरफ से धमकी दी जाती है चाइना को ट्रेड के मसले पर. तो ये कोई बहुत ही माकूल माहौल नहीं है
है, जिसमें एक मैच्योर अप्रोच हमारे देश की दिखाई दे रही है.
बिल्कुल. और अगर अब बाकी मार्केट्स की बात करें, खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इन्वेस्टमेंट की बात करें, वियतनाम की तरफ आप नजर डालें तो लगभग 70-80% उनकी जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ेगा ये जो टैरिफ, जो ट्रंप टैरिफ जिन्हें कहा जा रहा है उसका. बांग्लादेश की बात करें तो वहां भी लगभग एक ऐसा ही हाल है. तो ऐसे समय में ऐसी मार्केट, ऐसी इकोनॉमी, ऐसा देश जहां पर डोमेस्टिक पॉलिसी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही हो, डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छी हो, जीडीपी ग्रोथ का जो फॉरकास्ट है वो अभी भी पॉजिटिव सेगमेंट में चल रहा हो, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में चल रहा हो, तो अब ऐसे समय जब अंतर्राष्ट्रीय माहौल ट्रेड को लेकर, एक्सपोर्ट्स को लेकर काफी गर्माया हुआ है, इससे ज्यादा बढ़िया तो कोई जगह नहीं मिलेगी हिंदुस्तान से ज्यादा.
राइट. एंड इनफैक्ट अनदर पॉजिटिव फॉल आउट इज दैट चाइना सीम्स टू बी नाउ सॉफ्टनिंग एंड ट्राइंग टू मेक डील्स विद इंडियन कंपनीज. लेट्स मूव ऑन. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन टूडे लॉडेड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस, दैट इज द बीएसई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इट्स वाइटल रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक development. The Bombay Stock Exchange, BSE, Asia's oldest stock exchange, marked a historic milestone as it celebrated its 150th anniversary, and Finance Minister Nirmala Sitharaman was the chief guest at the celebration. Addressing the gathering, Ms. Sitharaman said, BSE processes orders worth 1,500 crore rupees daily, reflecting the seamless integration of cutting-edge technology. She added that this truly is a barometer of where the Indian economy is headed. Quite endorsing what you said, Vishal, just now. And the fact that we're also getting digitized, that also adds to the ease of doing business and to facilitate the entire economic. It's now becoming more and more well-oiled because of the digitization.
Yes, indeed. Just a small addition is that when you look at SEBI, you know, there have been a lot of regulatory norms which have been revised, put in place for the benefit of the domestic investors as well.
और इससे पहले कि हम रुपए की ओर चले, ब्रीफली अभी आपका इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह होगी? आपको लगता है कि ये ट्रेंड, बुल ट्रेंड कंटिन्यू करेगा?
देखिए, बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि बाजार अगर ऊपर और नीचे नहीं गया तो उसे फिर शेयर बाजार कहना गलत होगा, क्योंकि उसमें डिमांड और जो क्यूज आते हैं और खासतौर पर जिस तरह से मूवमेंट होता है उसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को जरूर मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से आउट परफॉर्म किया है, जिस तरह से जो नुकसान हुआ था 2 अप्रैल को भारतीय स्टॉक मार्केट में भी, स्टॉक एक्सचेंज में भी, उसको जिस तरह से लगभग 15 दिन के भीतर भीतर रिकवर किया है, वो बहुत ही पॉजिटिव क्यू है।
और अब देखते हैं करेंसी बाजार में कैसा प्रदर्शन रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 31 पैसे मजबूत होकर 85.37 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 99.57 पर था। काफी समय से 100 से कहीं ऊपर चल रहा था, अभी डॉलर इंडेक्स नीचे आया है। आगे क्या लगता है आपको, क्या रहेगा करेंसी का, रूपी की स्ट्रेंथ कितनी बनी रहेगी?
जी बिल्कुल, देखिए लगभग 109 के आसपास किसी समय पे था, अब 99 के आसपास है, तो डॉलर सूचकांक के नीचे आने का सीधा फायदा भारतीय बाजारों को मिलता है, भारतीय रुपए को मिलता है, और अगर भारतीय रुपए को मिलेगा तो भारतीय बाजारों में और निवेश होगा। जो मैं जिन कुछ कारणों का जिक्र कर रहा था, उन कारणों में एक कारण यह भी माना जा सकता है कि वो रिबाउंड हमें देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि डॉलर सूचकांक नीचे है तो जो FIIs हैं उनको लगता है कि वहां उनको वो रिटर्न नहीं मिलने वाला है अमेरिकी बाजार में या फिर और विदेशी बाजारों में, तो बेहतरी यही है कि आप भारतीय बाजार में आए और निवेश करें।
ऑलराइट, वेल, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी विद अ 6.5% ग्रोथ रेट इन 2025, व्हाइल ग्लोबल ग्रोथ इज सीन एज मार्किंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ रिसेशनरी पाथ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट्स UNCTAD रिपोर्ट। इंडिया हैज बीन लिस्टेड अमंग द कंट्रीज दैट आर प्रोपेलिंग ग्रोथ विद हायर गवर्नमेंट expenditure and monetary policy stimulus in the report titled Trade and Development Foresights 2025. The report projected China's growth rate at 4.4%, while the US economy is expected to grow at 1%. The growth for the European Union has also been projected at 1%, although France, Germany and Italy are all expected to record below 1% growth. Similarly, Japan's economic growth rate is expected to come down to a mere 0.5%. Can we make a comparative study, Vishal, because US economy is huge, very huge. When we say US economy to grow at 1%, ours at 6.5%, are comparisons odious or can we compare them?
I would say we can and we cannot, because it depends as to what we are trying to compare with and on what parameters are we trying to compare with. For US economy to grow at 1% and for Indian economy to grow at 6.5%, I would say we are doing fine, given the situation, you know, the global economic situation as well, and we're doing really fine. Yeah. But as far as US economy to grow at 1% in this present situation, I would say, well, they'll have to, you know, pull up their socks, because they were hoping to achieve a lot more. Yes. With the kind of steps which the US President Trump has taken in the past 2 months or so. Their target is something else. They want to, you know, give a sort of a jump start to their economy. If it's going to stay at 1%, it doesn't look like a jump start.
There was talk about recession in US.
Well, yes, there is a lot of talk about that. And in fact, you know, when you look at the global implications and you take a look at the projections, which you were just mentioning, I would say in these numbers, what I would be concerned about is France, Germany and Italy all expected to stay below 1%. As far as Japan is concerned, well, I would say it's all on the track. If you look at their previous track record as well, yes, perhaps they could do a little better. Mm-hmm. And that seems to be dragging down the European Union as well, projected only at 1%. So clearly it looks like, you know, and there is a very very significant causality between the US markets and the European markets as well, and both the economies also. So if the US economy is only going to grow at 1%, there seems to be a very significant trickle down impact on the European economies also,
and that should not be very. भारत के लिए इसका एक्सपोर्ट्स के लिए तो डेफिनेटली कुछ चैलेंज बन सकता है कि अगर वहां ग्रोथ कम हो रही है तो परचेजिंग पावर भी कम होगी. आपको लगता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी?
देखिए, हम क्योंकि केवल एक जगह पर या एक एक कोई पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट पर हम निर्भर नहीं है, जहां तक हमारे एक्सपोर्ट्स की बात है, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर भी निर्भर नहीं है. तो इसलिए एक वेरिड पोर्टफोलियो जब आपका होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में ही कहा जाता है, एनालिस्ट कहते हैं कि भाई, एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आप एक वेरिड पोर्टफोलियो रखिए, इसी तरह भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका भी एक वेरिड पोर्टफोलियो है. थोड़े बहुत मुश्किलात जरूर आ सकती हैं, जैसे आईटी सेक्टर में हमें देखने को मिल रही हैं और उसका एक रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल रहा है उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पे. लेकिन कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, और जैसे कहा जाए कि मुसीबत में मौका ढूंढा जा सकता है. और जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बात चल रही थी, जो लालिमा जी कह रही थी, और एक कंपैरेटिव एनालिसिस की बात हो रही थी, सीधे तौर पर क्योंकि अंततः घूम फिर के बात वही आती है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड, हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत बेहतरीन है. हम केवल एक्सपोर्ट्स पर निर्भर नहीं है, हम केवल इम्पोर्ट्स पर निर्भर नहीं है, और जिस कंजम्पशन की हम बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन की, उसको कैटर करने के लिए सप्लाई भी हमारे पास है ज्यादातर सेक्टर्स में. तो इसलिए ये असर थोड़ा सा कम दिखाई देता है, हालांकि हल्का फुल्का असर कभी न कभी जरूर थोड़ा बहुत दिख सकता है.
एंड विशाल, समटाइम्स इन्फ्लेशन कैन ईट इन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ और वाइप आउट द गेन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. द फैक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर सिस्टम्स, वेदर इट्स आरबीआई और आर ऑर्गेनाइजेशंस एट द टॉप, दे हैव इंश्योर्ड दैट आवर इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, एंड दैट हेल्प्स द इकोनॉमी टू ग्रो, एंड दैट gives us the stability as well.
Indeed, RBI's stance in the last few years has been very clear and very significant. Task has been given to the government, you know, between 4 and 6% you have to manage. Unless you do that, RBI is not going to loosen its purse strings. So that's the job of the central bank, and if they're sticking to it, and of course they can't just, you know, be stingy about it as well, that if the inflation is coming down, no, we'll wait for another, maybe perhaps another quarter or maybe two quarters. That's also not happening. So a very pragmatic approach being taken by the central bank, in tune with what the government's policies are, that's really important, and also in tune with what the data is talking about, what the data says.
And maybe the timing is also very good. जब रूम मिला है आरबीआई को रेट कट्स का, जब ऐसे समय पे बूस्ट करने के लिए सेंटिमेंट के आरबीआई के पास एक स्कोप है.
जी बिल्कुल,
रेट्स कटने का.
जी बिल्कुल, अब सही समय पे सही फैसला लिया गया.
जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने रक्षा बजट का 75% भाग घरेलू कंपनियों से खरीद के लिए आरक्षित किया है. नई दिल्ली में आज रक्षा सम्मेलन में श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि देश में रक्षा उत्पादन वर्ष 2014 में 40,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्तमान में 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण बनाने का लक्ष्य रखा है. रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र का पुनरुद्वार और सुदृढ़ीकरण सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. श्री सिंह ने कहा कि भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और एक रक्षा औद्योगिक परिसर बनाएगा जो न केवल भारत की आवश्यकताओं को पूरा करेगा बल्कि रक्षा निर्यात की क्षमता को भी मजबूत करेगा. सो जो हम बात कर रहे थे आत्मनिर्भरता की, वो रक्षा क्षेत्र में भी हम उसका सुदृढ़ परिणाम देख रहे हैं.
जी बिल्कुल, देखिए आत्मनिर्भर भारत की जब बात होती है तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू रक्षा क्षेत्र भी है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर जो है उसमें हमारा जो इम्पोर्ट का जो फिगर है वो बहुत सिग्निफिकेंट है. और अगर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जिस तरह से हम बढ़ावा दे रहे हैं, और इन जिन आंकड़ों का आपने जिक्र किया कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाना, और इसी तरह जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका भी केवल 300-400 करोड़ रुपए से बढ़ के हजारों करोड़ रुपए तक पहुंचना, ये इस बात का द्योतक है कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन था उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट सबसे ज्यादा बड़ा असर डिफेंस सेक्टर में देखने को मिला है, ना केवल डिफेंस की पीएसयूज में और उनकी कार्यप्रणाली में और उनकी गुणवत्ता में सुधार है, बल्कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि जो डोमेस्टिक प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है, चाहे वो बड़े नाम हो चाहे वो छोटी कंपनियां हो, उनको बढ़ावा मिला है। अगर उनकी ऑर्डर बुक में कुछ दर्ज होगा तभी वो आरएनडी में भी इन्वेस्ट करेंगे, तभी वो मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वेस्ट करेंगे और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमको बाकी इकोनॉमी में देखने को मिलेगा।
आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज तेजी का रुख था। हांगकांग का हैंगसेंग 1.58% के उछाल पर था। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम सूचकांक 1.56% की तेजी पर था। जापान के निकेई में 1.33% की बढ़त दर्ज हुई और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.93% की वृद्धि आई। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में भी 0.13% की वृद्धि हुई। इस बीच यूरोपीय क्षेत्र में गिरावट का रुख था और दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 0.63% गिर गया था। लंदन के फुटसी में 0.67% की गिरावट थी और फ्रांस का कैक 0.82% की मंदी में था।
And a look at the US markets now. US stocks fell sharply on Wednesday, hit by the double whammy of AI chip giant Nvidia, flagging steep charges from new US curbs on chip exports to China and US Fed chairman's caution over the economic impact of tariffs. Speaking at an event hosted by the Economic Club of Chicago last night, Fed Chairman Jerome Powell warned that Donald Trump's sweeping reciprocal tariff policy is likely to increase inflation. He noted that the announced tariff hikes are significantly larger than expected. He warned that the economic consequences, such as higher inflation and slower growth, are likely to follow. The Dow Jones Industrial Average ended almost 700 points, or 1.73% down. S&P 500 slipped 2.24%, weighed down by losses in the tech sector, while the Nasdaq Composite lost 3%. It is often being said, Vishal, that because of this, all this that's happening in the US markets, we may have a reverse brain drain because of, we may be getting the cream of our people who flock to the US markets back.
Isn't that a cherry on top of the cake for us?
Absolutely.
And the sooner that happens, the better it will be.
Yes.
लेते हैं अगली खबर। भारत का स्मार्टफोन निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। स्मार्टफोन पिछले वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों में भारत का सबसे बड़ा निर्यात बनकर उभरे हैं। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी। उन्होंने कहा कि 2013-14 में देश का स्मार्टफोन निर्यात 167वें स्थान पर था और अब ये पहले स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2020 में स्मार्टफोन के लिए PLI योजना शुरू की थी, जो इस क्षेत्र के लिए एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। मंत्री ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। और अब चलते हैं कमोडिटीज की ओर।
Well, crude oil first. International crude oil prices rose more than 1% today, the highest in 2 weeks after the United States to curb Iranian oil supplies, elevating supply concerns. Brent crude was trading 1.35% up at $66.74 per barrel. WTI crude was trading 1.50% up at $63.41 per barrel when reports last came in.
So, Vishal ji, jo crude oil ke prices hain, halaki aaj bade hain, lekin ye hamare liye ek bahut bada पॉजिटिव है। और अगर हम पीएलआई स्कीम का इफेक्ट देखें, जो स्मार्टफोन्स के भी हमने आंकड़े देखे, ये आपको लगता है कि जो पुराने कोविड के बाद जो सरकार का एक रिफॉर्म्स का पुश आया था, उसके अब हम रिजल्ट्स देख रहे हैं?
देखिए, क्रूड ऑयल के मामले में तो मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि उसका सीधा असर जो देश का धन है, जो फॉरेक्स है, रिजर्व है, उसको बचाने में हमें उस पर फायदा मिलेगा। और जहां तक स्मार्टफोन की बात है, तो ये एक ऑनगोइंग सक्सेस स्टोरी है
जी।
इसकी शुरुआत लगभग पिछले कई साल से हो चुकी है और इसके नतीजे अब ऐसे ही देखने को मिलते रहेंगे। जिन आंकड़ों का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि उससे और बेहतरीन आंकड़े आने वाले 6 महीने में देखने को,
और शायद और सेक्टर्स में भी हमें दिखेंगे।
जी बिल्कुल।
सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.45% गिरकर 95,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 1.3% गिरकर 94,880 रुपये प्रति किलो खेलों पर थी। समय समाप्त हो गया है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल जी, आप आए और आपने विभिन्न विषयों पर हमें बहुमूल्य विश्लेषण दिया।
धन्यवाद सोनू जी, थैंक यू लालिमा जी।
थैंक यू। एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी वाइंड अप, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बुल रन कंटिन्यूज इन डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट्स, सेंसेक्स सर्जेस नियरली 2% व्हाइल निफ्टी सेटल्स अबाउट 23,000 मार्क। इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 6.5% इन 2025 सेज अंक्टेड रिपोर्ट। एंड international crude oil prices rise over 1% today. Well, and that, on that note, it's time for us to bid adieu. This is myself, Lalima Aneja Dang, my co-anchor Sonu Sood, and our expert Vishal Daya signing off. Namaskar.
Namaskar. Market Patra.